नमस्कार भारत, आज है 2 जून, दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौता छोड़ने का किया ऐलान, कहा यह समझौता अमेरिका और अमेरिकियों के हित के खिलाफ।
I don't want anything to get in our way. I am fighting every day for the great people.
ओबामा, संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व के कई नेताओं ने की निंदा। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। सब्जी दूध की आपूर्ति रोके जाने से मुंबई जैसे शहरों में तंगी के आसार।
ये अगर 2-3 दिन तक जारी रहा, जाहिर है कि यहाँ की सरकार भाजपा की है, उसकी गूंज जो है वो दिल्ली में सुनाई देगी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से शुरू करेंगे केरल का 3 दिवसीय दौरा, होगी एक रिपोर्ट बिहार बोर्ड से जुड़े ताजा विवाद पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते से अलग होने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते में अमरीकी हितों की अनदेखी की गई है, जिससे 10 लाख अमरीकी नागरिकों की नौकरियां जा सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस समझौते पर फिर से बात करने या बिल्कुल नया समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे समझौते का समर्थन नहीं कर सकते जो अमेरिका को तो सजा देता है लेकिन ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों पर जिम्मेदारी नहीं डालता है। उन्होंने भारत और चीन का नाम भी लिया। ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई है। यूरोपीय संघ ने इसे धरती के लिए बुरा दिन कहा है। वहीं जर्मनी और इटली के साथ साझा बयान जारी करते हुए फ्रांस ने कहा है कि पेरिस समझौते पर फिर से बात नहीं होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई दूसरी योजना नहीं है। उन्होंने कहा, जब बात जलवायु परिवर्तन की हो तो कोई दूसरी योजना नहीं है, क्योंकि कोई दूसरी धरती नहीं है। इसलिए हम अपना काम जारी रखेंगे। वो सब वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिंतित नागरिक जो अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले से निराश हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपको फ्रांस में एक नया देश मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप फ्रांस आएं और हमारे साथ मिलकर काम करें, जलवायु परिवर्तन के लिए ठोस उपाय तलाशने के लिए काम करें। आज शाम अमेरिका ने दुनिया को अपनी पीठ दिखा दी है, लेकिन फ्रांस अमरीकी लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखाएगा। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के शब्द। फिलीपींस में पुलिस का कहना है कि राजधानी मनीला के चर्चित टूरिस्ट स्थल रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला में हमला करने वाला हमलावर मारा गया है। बंदूकधारी के गोली चलाने के बाद सैकड़ों मेहमान अपनी जान बचाकर भागे थे, जिससे अफरा तफरी फैल गई थी। पुलिस ने बंदूकधारी की खोज में कई घंटों अभियान चलाया। कुछ मेहमान दूसरी मंजिल से कूद गए, जिसमें कई की हड्डियां टूट गई हैं। शुरुआत में इस घटना को चरमपंथी हमला माना गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा है कि बंदूकधारी का उद्देश्य लूटपाट करना हो सकता है। पुलिस प्रमुख ने बताया कि बंदूकधारी सुरक्षा बलों की गोली से मारा गया है। वहीं एक अन्य पुलिस सूत्र ने बताया है कि हमलावर ने खुद को गोली मार ली थी। एक नए वैश्विक शोध से पता चला है कि दुनिया भर में डायरिया से होने वाली बच्चों की मौतों में साल 2005 से 2015 के बीच एक तिहाई की कमी आई है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में लिखते हुए अमरीकी शोधार्थियों का कहना है कि इस सुधार की वजह साफ पानी और शौचालय हैं। हालांकि शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि दुनिया भर में बच्चों की जान लेने के मामले में डायरिया अब भी चौथे नंबर पर है। डायरिया से सालाना 5 साल से कम उम्र के 5 लाख के करीब बच्चों की मौत हो जाती है। इनमें 40% से अधिक मौतें नाइजीरिया और भारत में ही होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। भारत और रूस के बीच हुई शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते सहित कुल 5 समझौते हुए। इनमें तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 5 और 6 के निर्माण के लिए हुआ परमाणु समझौता सबसे अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में 305 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य पूरा कर लिया। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने नाबाद 133 और इयन मॉर्गन ने नाबाद 75 रनों की पारियां खेली। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए पेरिस जलवायु संधि से बाहर निकलने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि इस संधि से अमेरिका और अमेरिकी लोगों का नुकसान हो रहा है। अपने चुनाव पूर्व वादे को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी उद्योगों और लोगों के रोजगार को लेकर चिंतित हैं और इसलिए पेरिस समझौते को छोड़ रहे हैं। दर्जनों अमेरिकी राज्यों और स्थानीय अधिकारियों ने ट्रंप के फैसले की निंदा की है। पेरिस समझौते में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भविष्य को नकार रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूरोपियन यूनियन समेत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे दुखद बताया है। ब्यौरा सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर 2015 में हुए पेरिस समझौते से अमरीका को अलग कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पेरिस समझौते में अमरीकी हितों की अनदेखी की गई है और वो नए सिरे से नया समझौता करेंगे जिसमें अमरीकी हितों की रक्षा करना उनका मकसद होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते साल अपने चुनाव अभियान में पेरिस समझौते से अमरीका को बाहर करने का वादा किया था और कहा था कि वो अपने देश के तेल और कोयला उद्योग की मदद करेंगे। समझौते से अलग होने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा,
आई डोंट वांट एनीथिंग टू गेट इन आवर वे, आई एम फाइटिंग एवरी डे फॉर द ग्रेट।
मैं नहीं चाहता कि कोई चीज हमारे रास्ते में आए। मैं हर दिन इस महान देश के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए ही अमरीका और अमरीकी नागरिकों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अमरीका को पेरिस समझौते से बाहर कर रहा हूँ। लेकिन हम पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने या बिल्कुल नया समझौता करने के लिए बातचीत भी शुरू करेंगे जिसमें अमरीका, अमरीका के उद्योगों, कामगारों और टैक्स देने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ट्रंप ने आने वाले समय में कई व्यापार समझौतों पर भी फिर से बात करने के संकेत देते हुए कहा,
We don't want other leaders and other countries laughing at us.
हम नहीं चाहते कि अन्य नेता और अन्य देश हम पर और हंसें, और अब वो नहीं हंस पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं पिट्सबर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, पेरिस का नहीं। मैंने वादा किया था कि मैं हर उस समझौते को तोड़ दूंगा या फिर से बात करूंगा जो अमरीका के हित में नहीं है। जल्द ही कई व्यापार समझौतों पर भी फिर से बातचीत होगी। दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ये दुनिया के लिए एक बुरा दिन है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस इस समझौते पर अमरीका से दोबारा बातचीत नहीं करेगा। मैक्रों ने कहा, आज शाम मैं पूरी शक्ति के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ना ही हम दोबारा बात करेंगे और ना ही किसी भी परिस्थिति में इससे कम महत्वाकांक्षी समझौता करेंगे। आज शाम फ्रांस ने समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों से पेरिस समझौते की शर्तों पर बने रहने और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का आह्वान किया है। वहीं 2015 में ये समझौता करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका के प्रांत, शहर और उद्योग धरती को बचाने के लिए और अधिक कदम उठाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने ट्रंप के फैसले को दुनिया भर के लोगों पर अनैतिक हमला कहा है। अमरीका के कई प्रांतों और नगरों ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका के पेरिस संधि से अलग होने का क्या असर होगा?
देखें, कुछ चीजों पर तो अमरीश इसका सीधा असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, अमेरिका को इस समझौते के तहत विकासशील देशों के लिए $3 अरब देना था, जिसमें से वो $1 अरब दे चुका है। समझौते से बाहर होने में अमेरिका को अभी 3 साल लग जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी की रकम वो देगा या नहीं। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी यूरोपीय शक्तियों ने हर हाल में इस समझौते को बरकरार रखने का ऐलान किया है, बल्कि विकासशील देशों को इस समझौते से जुड़े रखने के लिए जो आर्थिक मदद का वादा था वो उसे जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। भारत और चीन ने अमेरिका के बगैर भी समझौते से जुड़े रहने का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश जब इस समझौते से हट जाए तो आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने की मुहिम पर इसका क्या असर होगा। ट्रंप के इस ऐलान से अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमरीकी उद्योग जगत अब गैर पारंपरिक ऊर्जा को वैसी अहमियत देगा जो वो अब तक दे रहा था। क्या वो विकासशील देशों देश जो विकसित देशों से मदद के भरोसे इस समझौते से जुड़े थे इसमें बने रहेंगे? क्या बगैर अमरीकी नेतृत्व के कार्बन उत्सर्जन की सीमाओं पर नजर रखने की जो प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी? और इन सवालों के जवाब से काफी हद तक आप कह सकते हैं कि तय होगा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगी या उस पर ब्रेक लग जाएगा।
ब्रजेश, अमेरिका में ट्रंप के इस कदम को कैसे देखा जा रहा है? क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, उद्योगपतियों की और राजनेताओं की?
देखें, ट्रंप ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान करके अमेरिका फर्स्ट के अपने चुनावी वादे को पूरा करने का दावा किया है और अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करने की बात की है। उनके समर्थकों ने इस ऐलान का जबरदस्त स्वागत किया, खासतौर से वो इलाके जहां कोयले के खानों की बहुतायत है और जहां इन खानों के बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे थे, वहां उनके इस कदम को भरपूर सराहना मिली है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी खासी आलोचना हो रही है और दो राज्यों कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क ने तो आज ही कह दिया है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद वो उन सभी कदमों पर अमल करना जारी रखेंगे जिसकी पेरिस समझौते के तहत उनसे उम्मीद की जा रही थी। दूसरी बात कि कूटनीति, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के जाने माने जानकारों ने कहा है कि इस कदम से अमरीका न सिर्फ भविष्य की अर्थव्यवस्था की कमान किसी और के हाथों में सौंप देगा बल्कि अमरीकी हितों का भी खासा नुकसान करेगा। उद्योग जगत और यहां तक कि पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है। लेकिन जाहिर है कि ट्रंप की जो आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है, ये ऐलान उस नजरिए से आप कह सकते हैं बिल्कुल फिट बैठता है।
ब्रजेश, ट्रंप ने ग्रीन क्लाइमेट फंड का जिक्र करते हुए विकासशील देशों का नाम लिया, भारत के लिए ट्रंप के इस कदम के क्या मायने हैं?
देखें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बगैर भी समझौते से जुड़े रहने का ऐलान किया है और आपने सही कहा, ट्रंप ने अपने बयान में भारत पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वो इसी वजह से इस समझौते से जुड़ा क्योंकि उसे उसके बदले अरबों डॉलर की मदद का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि जहां इस समझौते के तहत अमरीका से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने कोयले के खदानों को बंद करे, वहीं भारत और चीन पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन हकीकत यह भी है कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में जारी एक रिपोर्ट अनुसार भारत और चीन दोनों ही ने 2015 के समझौते में कार्बन उत्सर्जन कम करने का जो लक्ष्य तय किया था वो उससे आगे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उम्मीद है कि भारत 2022 तक अपनी 40% बिजली गैर पारंपरिक स्रोतों से पैदा करने लगेगा जो पहले से तय लक्ष्य से 8 साल आगे है। लेकिन ये गौर करने की जरूरत है कि भारत अभी भी एक गरीब देश है, एक आम अमरीकी एक आम भारतीय के मुकाबले 15 गुना ऊर्जा इस्तेमाल करता है और यही वजह है कि जब भारत जैसे विकासशील देशों को इस समझौते में शामिल होने के लिए राजी किया गया तो उन्हें कई तरह के मदद का आश्वासन भी दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो शुरू से ही गैर पारंपरिक ऊर्जा की वकालत करते रहे हैं लेकिन इस बदले परिवेश में वो किस हद तक जाते हैं ये देखने वाली बात होगी।
ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और भारत का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और आज इसका व्यापक असर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कर्ज माफी और फसलों की के उचित मूल्य की मांग को लेकर किसानों ने सब्जियों और दूध की सप्लाई रोक दी है। किसान नेता कुंजीर शांताराम ने आंदोलन के हिंसक रूप लेने की चेतावनी दी है। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने जब उनसे आगे की रणनीति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
सहनशीलता का अंत हो गया है फार्मर लोग का। ये ठीक नहीं है कि रोड पे वो सब दूध बहाना चाहिए, सब्जी फेंकना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन मजबूरी से और जो संताप हुआ है शेतकरी में, फार्मर्स में, उसका ये उद्रेक है और ये उद्रेक आगे आगे चल के बहुत बड़ा उद्रेक होने वाला है ऐसा हमको लगता है। क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा मरने से चलो ऐसा मरो, तो आगे चल के किसान के जो बच्चे लोग हैं, किसान के जो लोग हैं, वो हथियार भी अपने हाथ में ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आगे।
ये थे किसान नेता कुंजीर शांताराम। महाराष्ट्र में किसान क्यों उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन का प्रदेश और केंद्र की सियासत पर क्या असर हो सकता है, इस पर हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने बात की वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से।
देखिए, राजनीतिक असर इसके 2-3 दिन में तो नहीं दिखाई देंगे लेकिन अगर इससे मुंबई जैसे शहर पर अगर उसका असर गिरता है, क्योंकि मुंबई में आने वाला जो भी दूध है या सब्जियां हैं ये सारी आजू बाजू के इलाकों से आती है, जैसे नासिक हो या पुना हो। और मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, वो एक इंटरनेशनल बिजनेस हब। और ये अगर 2-3 दिन तक जारी रहा, जाहिर है कि यहाँ की सरकार भाजपा की है, उसकी गूंज जो है वो दिल्ली में सुनाई देगी और दिल्ली से यहाँ की सरकार पर एक प्रेशर बन सकता है, उनका पार्टी इंटरनल प्रेशर बन सकता है। अगर ये चीज बहुत ज्यादा दिन तक चली, जैसे 10-15-20 दिन तक चली, तो फिर कई राजनीतिक परिस्थितियां अलग तरीके से तैयार हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ।
इस प्रदर्शन के पीछे शेतकारी संगठन की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, तो क्या इस बारे में पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन का असल चेहरा किसान ही है?
देखिए, इस आंदोलन के पीछे केवल शेतकारी संगठन है ऐसा नहीं है, कई अलग अलग संगठनाएं हैं, जैसे यहाँ की पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के कुछ लोग है, संभाजी ब्रिगेड के लोग है, शेतकारी संगठन के कई गुट है, वो कई गुट है, एक बड़ी राजा नाम की संगठन है। दरअसल ये सवाल जो है, किसानों को गत साल जो है मानसून अच्छी होने के बावजूद जो दाम मिलने चाहिए थे वो दाम नहीं मिले, विशेष करके अरहर के लिए, सोयाबीन के लिए किसान बहुत नुकसान में रहा। और सब्जियों के मामले में तो कई जगहों पर ऐसा हुआ कि सब्जियां जो है वो निकालना भी मतलब नुकसानदायक था, जैसे टमाटर है 1 रुपए में क्रेट बिक रहा था। आज भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उगाने वाला सेंटर है, नासिक यहाँ का 4 रुपए किलो से अच्छे से अच्छा प्याज बिक रहा है। तो ऐसे वक्त में किसान बड़ा नाराज है, प्याज थोड़ा सा सीजन में कभी बढ़ गया तो सारे जो प्रसार माध्यम है, चैनल्स है, अखबार है, यहाँ के पूरे मध्यम वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बड़ी जोर से उस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन जब वही किसान 2 रुपए में 3 रुपए में प्याज किलो पर बेचता है तब तो कोई आवाज नहीं उठा। ये कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों का जो गुस्सा है वो गुस्सा लेकर ये स्टेप उठाई गई है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा मौका है जब किसान जो है स्ट्राइक पर चले गए। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि उनके सरकार में किसान जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे और ये सबसे पहला मौका है। तो मुझे लगता है उस तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी की।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की 3 दिवसीय केरल यात्रा आज से शुरू हो रही है। पार्टी की नजरें 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलने पर है। क्यों अहम है अमित शाह का ये दौरा, क्या है पार्टी की रणनीति, और यूथ कांग्रेस की ओर से एक बछड़े को काटे जाने की घटना के बाद क्या हो सकते हैं इसके सियासी असर, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर से बात की।
देखिए, केरल में बीजेपी के लिए एक संगठन के रूप में बहुत सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, साथ साथ इनके साथ आरएसएस का भी वहाँ बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसको कभी इन्होंने वोट्स के हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद में असेंबली चुनाव में भी, जो केरल असेंबली का चुनाव हुआ था, उससे उनका थोड़ा सपोर्ट बढ़ा है। और केरल का जो जनसंख्या है जिसमें हिंदू का पॉपुलेशन केवल 45% है और क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ 55% है, इनको सारा हिंदू समाज को ये करने में, सपोर्ट हासिल करने में बहुत लंबा सफर। इसका कारण दूसरा क्या है कि मेन जो कम्युनिटीज है वहाँ पे, एक है नायर कम्युनिटी और दूसरे है एड़वा कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटी को वहाँ पे वामपंथी और कांग्रेस ने ही उनको उनके सपोर्ट लेकर आगे बढ़े। ऐसे लेफ्ट पार्टीज माने जाते हैं केरल में, वो हिंदू पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का सपोर्ट क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का है, लेकिन इसमें ये थर्ड फैक्टर रोल में बीजेपी जा रहा है। और दूसरी चीज है कि अमित शाह के वहाँ यात्रा करना इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी से लेकर वो चाह रहे हैं कि कम से कम आगे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि केरल में 20 लोकसभा सीट्स है, वो चाह रहे हैं कम से कम 1-2 सीट पे उनका कुछ जीत अगर हो जाए, वो अगर खाता खुल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी।
अगर हाल फिलहाल की घटनाओं से जोड़कर देखें तो अभी हाल ही में केरल में यूथ कांग्रेस की वजह से एक बड़ा विवाद रहा बछड़ा काटने की घटना को लेकर के, उसके मद्देनजर या किसी और नजरिए से आपको वहां भाजपा की कुछ रणनीति समझ में आती है क्या?
देखिए, वो जो घटना जो हुई है जिसको लेकर कांग्रेस को बड़ा सेटबैक हुआ है, ये कांग्रेस के लिए नुकसान बाहर है, जो केरल के बाहर जहां गो रक्षक को लेकर गो को ये करने में बहुत आस्था जो रखते हैं वो कांग्रेस के खिलाफ हो सकते हैं, जिसको बीजेपी बाद में इस्तेमाल करेगी अपने कैंपेन में केरल से बाहर। लेकिन केरल के अंदर ये घटना को लेकर लेफ्ट पार्टी की सरकार जिस तरह उन पर कार्रवाई ली है, केस डाली है, जो बात मैंने पहले कह रहा था कि हमेशा केरल में अगर हिंदू इंटरेस्ट को लेकर अगर कभी राजनीति उनके फेवर में कोई किया तो वो लेफ्ट पार्टी ने किया है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज के लिए मुसलमान सपोर्ट से ज्यादा हिंदू समाज का सपोर्ट रहा है। वो घटना को लेकर बीजेपी के लिए कोई केरल में ज्यादा फायदा नहीं हो सकता।
केरल के सियासी तापमान का विश्लेषण कर रहे थे शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों पर नज़र डालने का वक्त है। दिलनवाज पाशा हमारे सहयोगी स्टूडियो में हैं। दिलनवाज, मैं देख रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तस्वीर बहुत गौर से देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये बड़ी खास तस्वीर है। व्लादिमीर पुतिन झुककर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और इस पर शीर्षक लगाते हुए दैनिक जागरण ने लिखा, रूस ने कहा भारत ही दोस्त। कल सेंट पीटर्सबर्ग में भारत और रूस के बीच 5 अहम समझौते हुए। इसी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है भारत रूस पुरानी दोस्ती पर मुहर। और बाकी अखबारों में भी ये खबर पहले पन्ने पर है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर नई दुनिया ने छापी है, किसान दूध ले जा रहे वाहनों से दूध बिखेर रहे हैं सड़क पर। ये महाराष्ट्र से आई तस्वीर है जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी से जुड़ी खबर जनसत्ता में है। जनसत्ता ने बताया है किस तरीके से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक जातिगत आंदोलनों में और जो छात्रों के आंदोलन है उनमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब किसानों ने भी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अपने आंदोलन को धार दी है। अभी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आए थे और एक कहानी हिंदुस्तान हिंदी अखबार ने लिखी है उम्मुल खैर के बारे में। अखबार बताता है कि इनके 16 फ्रैक्चर हुए, 8 बार सर्जरी हुई और उसके बावजूद ये सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहीं। एक और खबर हिंदी के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर गोलीबारी में भारत की 5 सैनिक मारे गए हैं। मुझे ये खबर ज़्यादातर अंग्रेज़ी अखबारों में नहीं दिखी है। अमर उजाला लिखता है भारत का पाक को मुंहतोड़ जवाब, 5 सैनिक मारे। और लगभग इसी तरीके के वीर रस वाले जो शीर्षक हैं सभी हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। और चलते चलते बता देते हैं, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा के लिए जब आपका सोशल मीडिया अकाउंट जांचा जाएगा तो देखा जाएगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या क्या लिखा है।
ये हमारे श्रोताओं के लिए काफ़ी ज़रूरी जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज आपका।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कश्मीर घाटी पर जारी हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात सुरक्षा बलों की, जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और कश्मीर घाटी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करते हैं। लेकिन दिन रात आम कश्मीरियों को सुरक्षा प्रदान करने में लगी और चरमपंथी कार्रवाइयों में लगे सुरक्षा बलों की अपनी भी कई समस्याएं हैं जिन पर खुलकर बात नहीं होती। CRPF के DIG संजय कुमार ने BBC संवाददाता दिव्या आर्य और माजिद जहांगीर से बातचीत में सुरक्षा बलों की समस्याओं और चिंताओं की ओर ध्यान दिलाया।
मुझे लगता है अब ये समय आ गया है जब देखा जाए कि ह्यूमन राइट वायलेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों पर कितना हो रहा है। इसका कारण ये है कि कम जगह ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता है, हमेशा एक क्राइसिस होता है जिसमें उनको बेसिक ज़रूरत भी कई बार भूलना पड़ता है। एक आदमी के जो काम करने का जो नॉर्मल आवर्स होता है 8 घंटे, हमारे लोग 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक काम करते हैं, ये भी इनह्यूमन है। उनके ऊपर में पत्थर चलाया जाता है जब वो ड्यूटी पर होते हैं, ये ही इनह्यूमन है। उनको थ्रैश करते हैं, उनको इस तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं, उनको पोक करते हैं कि मजबूरन कभी कभी उनको उनके ऊपर में फोर्स यूज़ करना पड़ता है, मगर ये पोक करना, ये उनको अग्रवेट करना, ये इनह्यूमन है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन हम कर रहे हैं, बल्कि उसके उलट। अभी ही आप जो एक मीडिया में चल रहा है, पहले सोशल मीडिया में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, जिसमें एक छोटा सा सेक्शन 6 लोगों का जो गली से जा रहा है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो उसके ऊपर में पत्थरबाजी की है, उसको थ्रैश किया है। तो हम पूछते हैं कि ये किसके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो भी तो एक आदमी ही है, उसके पास में हथियार है, उसके बावजूद वो बर्दाश्त करते जा रहा है, वरना उनके ऊपर वो चला सकता था। कोई और आर्मी होती, कोई और आर्म्ड फोर्स होता दुनिया का कोई भी, तो शायद इस तरह के ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करता जो CRPF के उन सैनिकों ने किया। पहली बात तो मैं ये बात मानता नहीं, ये पत्थरबाज जो है आम कश्मीरी है, ये पत्थरबाज एक ग्रुप है जो जिनका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो वो पैसे की वजह से हैं, या वो जो उन उस जैसे तत्वों के जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। कभी एक खास जगह पर उनको मोबिलाइज किया जाता है, एक ही दिन में सारी जगह नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये प्लान्ड है, अनप्लान्ड है उनके द्वारा, जो पाकिस्तान से अपनी आदेश हासिल करते हैं। यहाँ के बच्चे कितने एजुकेशन इनका कितना मुश्किल में है, चार चार महीने बंद रहा है स्कूल, दो तीन महीने बर्फ के विंटर वैकेशन वैसे हो जाते हैं, इसलिए हमें मजबूरन उनको पीस एरिया में, जहाँ भी हम समझते हैं कि इस तरह का ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है और जहाँ वो स्कूल जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, जहाँ से वो अपनों के को तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि तो लगातार अलग रहना वो भी एक समस्या है। आप जानते हैं फैमिली के पास होने से भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है।
कश्मीर में सुरक्षा बलों की समस्याएं बता रहे थे CRPF के DIG संजय कुमार। आगे बढ़ते हैं। बिहार बॉर्डर विवाद का साथ जैसे चोली दामन का साथ बनता जा रहा है। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 64% छात्रों के फेल होने पर लोगों का गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद बोर्ड के साथ जुड़ गया है। ताज़ा विवाद आर्ट्स के टॉपर गणेश को लेकर है। पटना से C2 तिवारी की रिपोर्ट सुनिए।
एक छात्र जिसे संगीत विषय के प्रैक्टिकल में कुल 70 नंबर में से 65 नंबर मिले हों, उससे ये उम्मीद रखना गलत नहीं होगा कि उसका गला सुरीला हो या संगीत का उसे ज्ञान हो। यह आवाज़ है गणेश कुमार की। गणेश कुमार बिहार बोर्ड में इंटर आर्ट्स के टॉपर हैं। उन्हें 82.6% अंक आए हैं, लेकिन अब टॉपर का ये ताज उनके लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। दरअसल गणेश कुमार को लेकर पहले से स्थानीय मीडिया में शंका जताई जा रही थी। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले गणेश 24 साल के हैं। इस उम्र में आखिर वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह गणेश बताते हैं।
24 वर्ष की अवस्था में इंटर में एडमिशन लिए, कारण बीच में पढ़ाई मतलब जैसे कर नहीं पा रहे थे, बहुत डिस्टर्ब थे, पढ़ने का बहुत इच्छा था अंदर से, लेकिन समय कमाने के लिए और कमाई के साथ साथ घर परिवार चलाने में जूझ रहे थे।
गणेश के मुताबिक उन्होंने अपनी पढ़ाई लंबे वक्त तक छोड़े रखी और 2015 में मैट्रिक की परीक्षा बिहार के समस्तीपुर के लक्ष्मणिया से दी, जिसमें वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। 2017 में इंटर की परीक्षा उन्होंने समस्तीपुर के चक हबीब के रामनंदन सिंह जगदीप नारायण उच्च विद्यालय से दी थी। 1 जून की सुबह जब स्थानीय मीडिया ने उनसे संगीत से जुड़े सवाल पूछे तो उनका जवाब वो नहीं दे पाए। हालांकि शाम होते होते बिहार बोर्ड खुद गणेश के बचाव में सामने आया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि गणेश की कॉपियों में कहीं कोई कमी नहीं है, बाकी प्रैक्टिकल नीतिगत निर्णय के तहत होम सेंटर पर ही होता है।
टॉपर्स की सूची बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई है, वह पूरी तरह से सही है। उस टॉपर की सूची में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या अनियमितता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह CBSE, ICSE एवं लगभग अधिकांश राज्यों में भी प्रैक्टिकल के संबंध में यह नीति रही है कि प्रैक्टिकल का सेंटर होम सेंटर में दिया जाता है।
बता दें इस बार बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट फिर से सुर्खियों में है। बिहार बोर्ड में इंटर के 64% छात्र फेल हो गए हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ लोगों और छात्रों का गुस्सा उफान पर है, वहीं बोर्ड का दावा है कि परीक्षा में नकल नहीं करने दी गई, जिसके चलते ये नतीजे आए हैं। C2 तिवारी, BBC पटना।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के 2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते से अलग होने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते में अमरीकी हितों की अनदेखी की गई है, जिससे 10 लाख अमरीकी नागरिकों की नौकरियां जा सकती हैं। ट्रंप के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई है। यूरोपीय संघ ने इसे धरती के लिए दुखद दिन कहा है। वहीं जर्मनी और इटली के साथ साझा बयान जारी करते हुए फ्रांस ने कहा है कि पेरिस समझौते पर फिर से बात नहीं होगी। फिलीपींस में पुलिस का कहना है कि राजधानी मनीला के चर्चित टूरिस्ट स्थल रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला में हमला करने वाला हमलावर मारा गया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।